नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क 10 रुपए प्रति लीटर घटाया। राज्यों के वाणिज्यिक एलपीजी का आवंटन बढ़ाकर 70% किया। इससे पश्चिम एशिया संघर्ष से वैश्विक तेल की बढ़ती कीमतों में 140 करोड़ भारतीयों को राहत मिली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लॉकडाउन की अफवाहों को निराधार बताया। अंडर 23 ट्राई नेशन चैंपियनशिप 2026 में भारत कल शाम 7 बजे अरुणाचल प्रदेश के यूपिया स्थित गोल्डन जुबली आउटडोर स्टेडियम में भूटान के साथ मुकाबला खेलेगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कल लोकायुक्त के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रिटायर्ड प्रशांत कुमार देगा और सदस्य सांग फुनसोक के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने अरुणाचल प्रदेश के कामले, क्रादादी और कुरुंगकुमे जिलों में 1720 मेगावाट क्षमता वाली कमला जल विद्युत परियोजना के लिए आयोजित जनसुनवाई की सराहना की। भारतीय सेना के स्पेयर कोर के जनरल द्वारा गुरुवार को अपर सुबनसिरी जिले के सुबनसिरी हीलर्स फील्ड हॉस्पिटल में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र और रिफिलिंग केंद्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम पश्चिम एशिया संघर्ष पर राज्यों की तैयारियों और आयोजनों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने की समय सीमा 6 अप्रैल तक बढ़ाई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर केंद्रित उत्पाद शुल्क के 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है। सोशल मीडिया पोस्ट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि यह निर्णय पश्चिम एशिया संकट को बीच लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि डीजल के निर्यात पर 21.50 रुपए प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर 29.50 रुपए प्रति लीटर शुल्क लगाया गया है। श्रीमती सीतारमन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने हमेशा नागरिकों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की है। वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि पेट्रोल, डीजल और विमानन टर्बाइन ईंधन ATF की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होगी। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की। इसमें यह निर्णय लिया गया कि वैश्विक स्थिति के कारण पेट्रोल, डीजल और ATF की कीमतों में वृद्धि नहीं होनी चाहिए।
आज इस निर्णय के कारण सप्लाई कमी नहीं होगा, जनता को डीजल भी, पेट्रोल भी, क्रूड भी मिलेगा और ATF बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत देश का एयरक्राफ्ट और हमारी कंपनियों का एक ATF मिलना आवश्यक। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इमरजेंसी में एक मीटिंग बुलाई और इस विषयों के ऊपर चर्चा गोष्ठी करके तुरंत निर्णय किए।
लॉकडाउन की अफवाह को निराधार बताते हुए श्रीमती सीतारामन ने लोगों को आश्वस्त किया है कि कोविड महामारी के दौरान लागू की गई लॉकडाउन जैसा कोई लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि जब पश्चिम एशिया संकट के बीच दुनिया ईंधन की कमी से जूझ रही है और वैश्विक स्तर पर कीमतें बढ़ रही है, ऐसे में सरकार द्वारा ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कटौती निर्णय से 140 करोड़ भारतीयों को राहत मिलेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिक चिंता यह सुनिश्चित करना है कि आम नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी को अभूतपूर्व बताया है।
इतना विपत काल में जबकि एक क्षेत्र में युद्ध चल रहा है जहां से हमारा गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट सारे आते हैं, फिर भी ऐसे समय में इतना बड़ा कदम उठाना ये कोई मामूली कदम नहीं है, क्योंकि हमारे आम भारतीय लोगों को अपने जिंदगी में तकलीफ ना हो इसका सोच प्रधानमंत्री जी ने आज दिखाया है।
अंडर 23 ट्राई नेशन चैंपियनशिप 2026 में भारत कल शाम 7 बजे अरुणाचल प्रदेश के यूपिया स्थित गोल्डन जुबली आउटडोर स्टेडियम में भूटान के साथ मुकाबला खेलेगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कल लोकायुक्त के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रिटायर्ड प्रशांत कुमार देका और सदस्य सांग फुनसोक के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें लोकायुक्त संस्था को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया ताकि पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को बढ़ाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकायुक्त की भूमिका संस्थागत ईमानदारी बनाए रखने और जनता के विश्वास को मजबूत करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कामले, क्रादादी और कुरुंगकुमे जिले में 1720 मेगावाट क्षमता वाली कमला जल विद्युत परियोजनाओं के लिए आयोजित जनसुनवाई की सराहना की। उन्होंने इसे जनभागीदारी आधारित विकास का एक सशक्त उदाहरण बताया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों के बावजूद स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी राज्य के विकास के प्रति उनकी जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि लोगों के सुझाव और सहभागिता ने इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को और अधिक अहम बनाया है। भारतीय सेना के स्पेयर कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत एस पांडेरकर ने गुरुवार को अपर सुबनसिरी जिले के सुबनसिरी हीलर्स फील्ड हॉस्पिटल में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र और रिफिलिंग केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र पुणे स्थित सोल्जर्स इंडिपेंडेंट रिहैबिलिटेशन फाउंडेशन के सहयोग से स्थापित किया गया है, जो दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन का उत्पादन करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम पश्चिम एशिया संघर्ष पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे और राज्यों की तैयारियों तथा योजनाओं की समीक्षा करेंगे।
सूत्रों के अनुसार बैठक में टीम इंडिया की भावना से समन्वित प्रयासों को सुनिश्चित करने पर बल दिया जाएगा। हालांकि आदर्श आचार संहिता के कारण चुनाव वाले राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के दोनों सदनों में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर भारत का रुख स्पष्ट किया था। श्री मोदी ने कहा था कि सरकार पेट्रोल, डीजल, तेल, गैस और उर्वरकों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने सदन को बताया था कि भारत ने पिछले 11 वर्षों में ऊर्जा आयात के अपने स्रोतों को 27 देशों से बढ़ाकर 41 देशों तक कर दिया है। इससे किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम हो गई है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने की समय सीमा 6 अप्रैल तक बढ़ा दी है। श्री ट्रंप ने कल सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि वो ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर फिलहाल बमबारी नहीं करेंगे। इस बीच हजारों अमेरिकी सैनिक क्षेत्र में करीब पहुंच चुके हैं। उधर ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। दूसरी तरफ इसराइल ने हिजबुल्ला से लड़ने के लिए दक्षिणी लेबनान में और अधिक सैनिक तैनात की है। ईरान की राजधानी और कई शहरों में भारी हमले किए गए हैं। श्री ट्रंप ने कहा है कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका के संबंध और भी मजबूत होंगे। भारत में अमेरिकी दूतावास में राष्ट्रपति के इस बयान को अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर साझा करते हुए कहा गया है कि इसमें श्री ट्रंप ने कहा केवल वे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ऐसे दो व्यक्ति हैं जो हमेशा काम को अंजाम देते हैं और ये बात अधिकांश लोगों के लिए नहीं कही जा सकती। रामनवमी का त्यौहार आज श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में इस उत्सव में मुख्य आकर्षण अयोध्या बनी हुई है।
रामनवमी के उत्सव के लिए 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु प्रभु राम की नगरी अयोध्या में मौजूद हैं। लोग सरयू नदी और राम की पैड़ी में स्नान कर रहे हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी जैसे भजनों की धुन पर पूरी अयोध्या गुंजायमान है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में सुबह भगवान राम के अभिषेक के बाद ठीक दोपहर 12 बजे गर्भगृह में सूर्य तिलक हुआ। इसके बाद 56 भोग प्रसाद चढ़ाए गए और प्रभु की आरती हुई। मंदिर आज देर रात तक दर्शन के लिए खुला रहेगा। आज शाम चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के किनारे एक और भव्य आयोजन होगा, जहां रामनवमी के उपलक्ष्य में लगभग 22 लाख दिए जलाए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
सरकार ने बताया है कि देश में पिछले एक दशक में यूरिया का घरेलू उत्पादन 230 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 315 लाख मीट्रिक टन हो गया है। आज लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए 2014 से गोरखपुर, सिंदरी, बरौनी, रामागुंडम और पानागर सहित विभिन्न स्थानों पर कई नए उर्वरक संयंत्र स्थापित किए गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि खरीफ मौसम के लिए देश में पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध है और किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत वर्तमान में वैश्विक स्तर पर लगभग 30% जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति करता है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने कहा है कि भारतीय चिकित्सा परिषद विनियमन 2000 के अंतर्गत सभी पंजीकृत चिकित्सकों को रोगियों को जेनेरिक दवाएं खिलाना और तर्कसंगत सलाह देने की प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, असम, मेघालय और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं की संभावना है। और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी RSP के संसदीय दल के नेता बालेंद्र शाह ने आज नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।